धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 16
ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ सुतात्मने नमः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसानं मुनिसुवयदेशयरं पणनीय मुनिसुवयं जिनं देवं संकममनुगमिनं जहासुवं वन्नैस्सामो।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही है, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार को देखते हुए इस 16वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 432 पर हम आ गए, 432। यहाँ प्रदेश संक्रम के प्रकरण में हम जघन्य प्रदेश संक्रम के स्वामित्व की बात यहाँ से देखने जा रहे। कल हमने उत्कृष्ट का स्वामित्व देखा था, अब जघन्य का स्वामित्व देख रहे हैं। देखो, अब यहाँ जघन्य प्रदेश संक्रम के स्वामित्व की प्ररूपना की जाती है। यथा मति ज्ञानावरण का जघन्य प्रदेश संक्रामक कौन होता है? जो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य यानी अभव्य सिद्धि के योग्य यथा योग्य, उसमें जो हो सकता है ऐसा सर्व जघन्य सत्कर्म के साथ चार बार कषायों को उपशमा कर, यानी उसमें विक्षपित कर्मांशिक नहीं लिया है, मिथ्या दृष्टि के अभव्य के जितना मिनिमम हो सकता है उतनी सत्ता वाला जीव। अभव्य ऐसा नहीं कहा, हाँ अभव्य ऐसा नहीं कहा, अभव्य के योग्य यानी अभव्य जीव जितना जघन्य कर सकता है उसके साथ चार बार कषायों को उपशमा कर और बहुत बार संयमा संयम एवं संयम को प्राप्त करके उत्पन्न हुए अवधि ज्ञान से संयुक्त होता हुआ क्षपण करता है। तो अवधि ज्ञान से युक्त होता है तो हमने देखा, तो अवधि ज्ञान के उदय और अनुदय की अपेक्षा से पहले भी हमने देखा था ना कि उसमें कितना प्रदेश उसमें आता है, क्या आता है वगैरह। तो अवधि ज्ञान से संयुक्त होता हुआ उसका उदय है यानी अवधि ज्ञान है, उसका अर्थ क्या है? देशावधि का बहुभाग जो है उदय रूप हो रहा है। अवधि ज्ञान नहीं है तो उसका जो देशावधि का जो बहुत भाग तो देशावधि का होता है, सर्वघाती का उदय तो उसका देशावधि जो है वो अन्य रूप से होकर उदय में आता है, इसलिए अभी मति ज्ञानावरण में उसका भाग नहीं जाएगा, इसलिए अवधि ज्ञानावरण के उदय से यानी अवधि ज्ञान से सहित जीव लिया। हमने उदय के प्रकरण में देखा था, उदय में परमाणु कम होते हैं या ज्यादा होते हैं ऐसा हमने मति ज्ञानावरण के लिए देखा था। तो पांच ज्ञानावरण है, पांचों ज्ञानावरण का उदय है। अब जिसके अवधि ज्ञान है तो उसके अवधि ज्ञानावरण का वो देशघाती का उदय है। सर्वघाती अनंत में भाग होता है, देशघाती अनंत बहुभाग होता है। अगर अवधि ज्ञान नहीं है ना उसके सर्वघाती का उदय है तो उसका देशघाती अन्य चार ज्ञानावरण रूप से उदय में आता है, यानी उसमें भी उसका बंटवारा जाएगा। अब यहाँ प्रदेश संक्रम की बात है, प्रदेश संक्रम में भी ऐसा ही लेना कि प्रदेश संक्रामक ज्यादा कौन होगा या कम कौन है, यहाँ कम की बात चल रही है ना, मिनिमम। पेज नंबर है 432, संक्रमण का हमारा चल रहा था, आपने सुना है क्या? नहीं, और उसमें भी प्रदेश संक्रमण की बात चल रही। पहले हमने प्रकृति संक्रमण देखा, फिर स्थिति संक्रमण देखा, अनुभाग संक्रमण देखा, अभी प्रदेश संक्रमण में हमने वो पांच प्रकार के संक्रमण भागहार भी देखे थे, यानी कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। अब यहाँ कल हमने उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण के स्वामी देखे थे, अब जघन्य की बात करें। देखो पहले लाइन से फिर पढ़ते हैं। अब यहाँ जघन्य प्रदेश संक्रम के स्वामित्व की प्ररूपना की जाती, यथा मति ज्ञानावरण का जघन्य प्रदेश संक्रामक कौन होता है? जो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य सर्वजघन्य सत्कर्म के साथ चार बार कषायों को उपशमा कर बहुत बार संयमासंयम एवं संयम को प्राप्त करके, यानी पहले में पहले क्षपित कर्मांशिक में भी ये कंडीशन हम डालते हैं, परंतु क्षपित कर्मांशिक के पहले से उसने अभव्य के प्रायोग्य तो जघन्य सत्कर्म किया था, फिर और यहाँ पर तो गुणश्रेणी वगैरह रूप से बहुत सारा द्रव्य उसका निकल गया है, प्राप्त करके उत्पन्न हुए केवल ज्ञान से संयुक्त होता हुआ क्षपण करता है। उस अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के मति ज्ञानावरण का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि उसके बाद संक्रमण नहीं होता, क्योंकि बंधने वाली प्रकृति है तब तक ही संक्रमण होता है। श्रुत ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। अवधि ज्ञानावरण की भी प्ररूपणा इसी प्रकार है, विशेष इतना है कि क्षपणा करते हुए उसके अवधि ज्ञान नहीं होता यह कहना चाहिए। यह अवधि ज्ञानावरण की विशेषता, हमने अन्य चार ज्ञानावरण से अभी इसका अवधि ज्ञान नहीं है, नहीं है तो उसका बहुभाग जो देशघाती वो अन्य रूप से उदय में आएगा, उदय में आ गया। यहाँ संक्रमण की बात चल रही, उसका संक्रमण नहीं होगा ज्यादा, तो कम का संक्रमण होगा, जघन्य संक्रमण होगा।
अवधि ज्ञान का उदय नहीं लिया उसके जघन्य प्रदेश संक्रमण के लिए,
संक्रमण भी कम होता है उसका, संक्रमण में भी वही कंडीशन लगाई।
तो यहाँ पे जो देश घाती है वो स्थिभूत संक्रमण से?
नहीं नहीं, देश घाती वगैरह की बात वो मैंने अपनी ओर से कही है, उनका यही है कि अवधि ज्ञान रहित वाले जीवों को जघन्य संक्रमण है, हमने उदय के लिए भी ऐसा ही देखा था उसमें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ये मति ज्ञानावरण की और सभी, यानी अभव्य जितना कर सकता है उतना, और बाद में और उसने क्षपक्षणी, वो अभव्य है ऐसी बात नहीं, क्योंकि तो हाँ अभव्य जितना मिनिमम कर सकता है उतना। चक्षु अचक्षु अभी हमने देखे ना, उसमें तो जैसे गुणित कर्मांशिक क्षपित कर्मांशिक ऐसी कंडीशन लिए थे, यहाँ तो अभव्यों के पहले जगह नहीं किया, बाद में बहुत बार उसने संयम धारण किया वगैरह, बाद में वो लिए कंडीशन, इसे क्षपित कर्मांशिक में हम घटित करते हैं कि उसके मिनिमम सत्ता है और तब लेना इसको, ऐसे यहाँ पर भी लेना। चक्षु अचक्षु और केवल दर्शनावरण की प्ररूपना मति ज्ञानावरण के समान है, अवधि दर्शनावरण की प्ररूपना अवधि ज्ञानावरण के समान है, जैसे ऊपर बताया वैसा ही लेना। हाँ, यानी अवधि ज्ञान से संयुक्त वाला जीव है जघन्य संक्रमण के लिए। हाँ, और अवधि दर्शनावरण के कब होगा? जब अवधि दर्शन नहीं, यानी अवधि ज्ञान नहीं है वाले जीवों को, उसका जघन्य प्रदेश संक्रम होगा। नहीं संयम, हाँ बहुत बार संयम तो 32 बार कर सकता है, संयम बहुत। हाँ, क्षपित कर्मांशी के लेना है उसको। हाँ, अंतिम भो लेना, क्यों बहुत बार प्राप्त किया ना, मैक्सिमम हाँ अधिक से अधिक 32 बार संयम धारण करता है तो उस संयम उसके साथ वो तो क्षपणा करेगा ही करेगा। निद्रा और प्रचला की प्ररूपणा श्रुत ज्ञानावरण के समान है, विशेष इतना है कि निद्रा और प्रचला का जघन्य संक्रम अवधि ज्ञानी के ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। क्या कहा? जैसे चक्षु अचक्षु केवल दर्शन आवरण के लिए जो बताई ही, उसके लिए तो हाँ जो अवधि ज्ञान से संयुक्त है उसके उसका जगन्य बताया, परंतु निद्रा प्रचला के लिए वो नियम नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वघाती है ना, उसमें वो देशघाती का उसमें आने का कोई सवाल नहीं। निद्रा और प्रचला के जघन्य संक्रम को बंध विच्छेद के अंतिम समय में ही देना चाहिए। आठवें के पहले भाग में बंध विच्छेद वहीं पर है ना। स्थान वृद्धि त्रय का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? अश्विन में मेरा आपसे प्रश्न है, बंध विच्छेद के अंतिम समय में क्यों दिया? हाँ, उसका कौन सा संक्रमण चल रहा है? जब तक बंद है तब तक अधप्रवृत्त संक्रमण है। बाद में क्या होगा? उसका गुण संक्रमण होगा। अपूर्वकरण के बाद गुण संक्रमण होता रहता है। जघन्य की बात है ना, यहाँ पर मिनिमम चाहिए हमको। और अधप्रवृत्त में भी जितना है द्रव्य उसका और घट रहा है उसका। हाँ, अधिक द्रव्य संक्रमित होगा ना गुणित प्रमाण में, इसीलिए हाँ, इसलिए ये अंतिम समय लिया। स्थान वृद्धि त्रय का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो क्षपित कर्मांशिक स्वरूप से आकर संयम को प्राप्त हो, सर्व जघन्य अंतर्मूर्त मात्र संसार के शेष रहने पर अंतिम समयवर्ती अधप्रवृत्त करण हुआ है, उसके उस समय स्थान वृद्धि त्रय का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अंतिम समयवर्ती अधिप्रवृत्ति सातवां गुणस्थान है। सातवें गुणस्थान तक तो उसका विद्या संक्रम है, सातिश हो नहीं हो उससे कुछ मतलब नहीं है। अपूर्वकरण के बाद उसका गुण संक्रमण चालू हो जाएगा। नहीं समझे? विद्या संक्रमण नहीं यहाँ पर उसका। साता वेदनीय का ये कल हमने वो सब संक्रमण कौन से कहाँ होते उसके बाद देखी थी कि जिसका जहाँ बंद है वहां तक उसको अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। इसमें केवल मिथ्या दर्शन मुनि को छोड़कर बाकी सभी के लिए यही रूल है। और फिर बंद विच्छित्ति के बाद और सातवें गुणस्थान तक विद्या संक्रमण होता है। जिसका ऊपर तक बंद विच्छित नहीं हुआ उसका तो वहां पर भी अधप्रवृत्त संक्रमण ही चलेगा। अपूर्वकरण के ऊपर गुण संक्रमण होता है, वो भी अप्रशस्त में देखा था खास करके। यानी उसमें कौन सी बनती है कौन सी नहीं बनती उसका विचार करके हमने डिराइव कर दिया था। साता वेदनीय का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य जघन्य सत्कर्म के साथ कषायों का न उपशमा कर क्षय करता है। उसके हाँ डायरेक्ट शपक श्रेणी उसके जब असाता वेदनीय का अंतिम बंद होता है, क्योंकि उसका संक्रमण कब होगा? जब कोई बंद रहे उसका असाता वेदनीय तभी, तब उस बंद के अंतिम समय में साता वेदनीय का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। ये बंद का बंद विच्छित उस तो उसकी छठे में है। हाँ, तो वहां पर इसका जो बंद रहा है ना, ये साता वेदनीय का बंद है वहां तक। हाँ, तो उसका तो अधप्रवृत्त संक्रमण रहेगा, ये वो भी मिनिमम वहां पर। अब असाता वेदनीय का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? उसका तो बंधने वाला साता वेदनीय है ऊपर तक, जो जघन्य सत्कर्म के साथ चार बार कषायों का उपशमा कर क्षय करता है। क्योंकि उसने असातावेदनियों को तब भी संक्रमित कर दिया था। उसके अधप प्रवृत्ति देखो देखो साता में क्यों नहीं लिया उसको, साता को लेते तो साता का द्रव्य बढ़ जाता, क्योंकि श्रेणी में तो असातावेदनीय साता रूप से गुण संक्रमण करके उसका द्रव्य बढ़ जाता, इसलिए उसको बिना कषाय को उपशमाय के हुए लिया। अब यहाँ उपशमाया तो असाता का द्रव्य कम हो गया साता रूप होते होते, तो चार बार कषायों का उपशमा कर उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा। चार बार ने एक भाव में तो नहीं होता है, यथा योग्य। उसके अधप प्रवृत्त करण के अंतिम समय में असाता वेदनीय का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अधप प्रवृत्त करण का अंतिम समय क्यों लिया, वहां तक विद्या संक्रम है, इसलिए क्योंकि बाद में उसमें गुण संक्रमण चालू हो जाए। विद्यार्थी होता है ना सातवें तक, इसका अधप्रवृत्तकरण यानी सातवां गुण स्थान अंतिम समय तक, भले वो सातिशय भी क्यों ना हो। देखो इसका अपना बंधक कहाँ तक है, छठे तक, तब तक तो अधप्रवृत्त संक्रमण चल रहा था, और सातवें तक विद्या संक्रमण, यानी अकेले सातवें में विद्या संक्रमण। मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो जघन्य सत्कर्म के साथ दो छासर सागरोपम तक सम्यक्त्व का पालन कर चार बार कषायों को उपशमा कर संयम और संयमा संयम को बहुत बार प्राप्त कर तथा सबसे महान सम्यक्त्व काल का पालन करके, ये सब छासर सागर के अंदर ही अंदर लेना है ना उसको, सब अंतर्मूर्त काल में सिद्ध होने वाला है। हाँ, इसीलिए जो दर्शन मुख की क्षपणा करता है उस दर्शन मुख क्षपक के अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, क्योंकि उसका जो अपूर्वकरण चालू हो गया, तीन करण में से अपूर्वकरण, दर्शन मुख की क्षपणा के लिए जो तीन करण होते हैं उसमें जब तक अधप्रवृत्तकरण है तब तक उसका कौन सा संक्रमण है, विद्या संक्रमण चलेगा इसका, नहीं समझे। अधप्रवृत्ति वो सातवा वाला नहीं लेना, दर्शन मुख की क्षपणा करने वाले तीन करण में से अपूर्व अधप्रवृत्त लेना, क्षपणा वाला अधप्रवृत्त, दर्शन मुख की क्षपणा वाला, ये गुणस्थान चार पांच छह सात कुछ हो सकता है। इन्हें दर्शन मुख क्षपक का वो अधकरण है, अधप्रवृत्तकरण, वहां मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, उसके बाद उसका गुण संक्रमण चालू हो जाएगा और सर्व संक्रमण होगा। जब क्षपणा चालू करता है तब जब तक उसका अधकरण पहला करण चल रहा है तो पहले करण तक उसका विद्या संक्रमण है, चार पांच छह सात चार गुण कहीं पर भी हो सकती है, और कहीं पर भी उसका विद्या संक्रमण ही है ना। हाँ, गुण संक्रमण कब होता है उसका, या तो प्रथम उपशम सम्यक के पहले अंतर्मूर्त में, या अभी दर्शन मुख की क्षपणा में जो तीन करण है उसमें अपूर्व करण से, तब उसका गुण संक्रमण होता है, और अंतिम फाली का सर्व संक्रमण होता है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है, जिसने मिथ्यात्व के जघन्य सत्कर्म के साथ सम्यक्त्व को उत्पन्न कर लिया है। पूरा प्रश्न
संक्रमण
फिर पूरा प्रश्न,
मिथ्यात्व का गुण संक्रमण,
मिथ्यात्व का गुण संक्रमण
अंतिम कांडक में ही लेना है कि
अपूर्व करण से गुण संक्रमण होता रहता है ना उसका।
पर हमने देखा था कि वो भी असंख्यात का भाग है और गुण संक्रमण अंतिम कांडक में होता है।
अंतिम कांडक में होता है परंतु देखो देखो हमने क्या देखा था, अपूर्व करण से तो गुण संक्रमण ही है। वो उद्वेलना में उल्टा दिया था, वो उद्वेलना में अंतिम कांडक में गुण संक्रमण लिया था। हाँ, क्योंकि उद्वेलना वाला भागार अलग है और यहाँ वाला अलग है। अपूर्व करण से गुण संक्रमण लिया था हमने, अप्रशस्त प्रकृति है ना। देखो अभी क्या पूछ रहे हैं, सम्यक्त्व का, सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का। तो जिसने मिथ्यात्व के जघन्य सत्कर्म के साथ, मिथ्यात्व का मिनिमम है, सम्यक्त्व को उत्पन्न कर लिया है तथा जघन्य गुण संक्रम और जघन्य पूरण काल के द्वारा सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व को मिथ्यात्व के प्रदेशाग्र से पूर्ण किया है, तत्पश्चात जो 2600 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व का परिपालन करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ होता हुआ सबसे महान उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करता है, उसके द्विचरम उद्वेलन कांडक के अंतिम समय में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अपने अपने अंतिम ले लेना, क्योंकि सम्यक्त्व का पहले पूरा होगा बाद में सम्यक मिथ्यात्व का होगा। यहाँ क्या कहना चाहते फिर पढ़ते देखो। पहले में पहले मिथ्यात्व का उसने जघन्य सत्कर्म था, उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो वहां जघन्य गुण संक्रम, क्योंकि यह औपशमिक सम्यक्त्व है तो ये गुण संक्रमण का काल भी छोटा लिया, यानी उतने काल तक उसने गुण संक्रमण किया, यानी सम्यक्त्व में कम द्रव्य आया ऐसा जीव लिया। और जघन्य पूरण काल के द्वारा सम्यक्त्व एवं सम्यक मिथ्यात्व को पूर्ण किया, यानी जब तक वो तो संक्रमित होता है ना, अन्य उसके प्रकृति पूर्ण तैयार हुई, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और फिर वो 2600 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व में रहा, तो वहां उसका एक एक निषेक तो खिरता ही गया ना। अब नया मिथ्यात्व का बंध नहीं है, और जो मिथ्यात्व है उसमें आता चला जाएगा, अपन उसके जो अपने निषेक तैयार हुए है वो तो एक एक करके खिर जाएंगे, यानी उसका द्रव्य उतना कम हो जाएगा। उसके बाद वहां तो उसके दोनों के कुछ संक्रमण नहीं है, जब तक समय दृष्टि है तब तक सम्यक्त्व का भी संक्रमण नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं है। तो अब वो 2600 के बाद मिथ्यात्व में आया है, मिथ्यात्व में भी उसका उद्वेलना काल बहुत बड़ा लिया। हाँ, तो जब तक द्विचरम कांडक तक उसका उद्वेलना संक्रमण ही होता रहता है, और वो भी विशेषण विशेषण होता चला जाता है। यहाँ तक द्विचरम कांडक की अंतिम फाली तक वो तो विशेषण रूप ही चला जाता है, बाद में अंतिम कांडक में उसका गुण संक्रमण और बाद में सर्व संक्रमण होता है। इसलिए द्विचरम उद्वेलना कांडक के अंतिम समय में सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, और इसका सम्यक्त्व का भी। हमने वहां सम्यक्त्व शब्द डाला था, हाँ ऊपर भी है ना, हाँ क्योंकि ऊपर प्राकृत में तो है सम्मत सम्मम इच्छात्तानम। द्रव्य आएगा नहीं, उसका एक एक निषेक खिर जाएगा। अगर जल्दी मिथ्यात्व में आता तो उसका द्रव्य ज्यादा था। उद्वेलना काल भी लंबा लिया, क्योंकि प्रति समय उसका तो विशेषण विशेषण द्रव्य होता चला जाता है। सम्यक्त्व का काल तो लिया ही लिया, और मिथ्यात्व में भी उद्वेलना काल बढ़ा लिया। हाँ, वो तो सम्यक्त्व के काल में उसका निषेक घिरता गया। हाँ, मिथ्यात्व में से थोड़ा द्रव्य आया परंतु थोड़ा था, पहले गुण संक्रमण जितना आता है उतना नहीं ना। समय दृष्टि रहा 2600 सागर तक, तो उसका विद्या संक्रमण चल रहा मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व में से ये दो प्रकृति तैयार होती भी रही और उसके अपने निषेक खिरते भी गए। जब मिथ्या द्रव्य कम होता चला जाता है। नहीं, उद्वेलना काल कुछ भी हो सकता है। तो मिथ्यात्व में आने के बाद उसका बड़ा उद्वेलना काल लिया, अधिक से अधिक लंबे काल में उसने उद्वेलना की। कितना भी बड़ा हो जाए, पल्ले का असंख्या तो भाग ही है, उसमें भी तरतमता हो सकती है, उसके लिए उसको बढ़ा लिया।
एक होता है जो कांडघात होता है, वहां पे पहले समय में असंख्या तो भाग जाता है, उससे दूसरे समय में ज्यादा जाता है, तो लास्ट जब भी फाली गिरेगी तो असंख्या बहुभाग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो संक्रमण,
वो भी जितना द्रव्य बचा है उसके भागहार में वो जाता है।
नहीं, पर तो पहले समय में क्यों
वो
नहीं
पहले है? उन्होंने उद्वेलना के बारे में नियम बता दिया था। निकालो, कल आपको दो बार पढ़ के भी बताया था उद्वेलना के लिए क्या नियम
है।
निकालो, पहले निकालो उद्वेलना के लिए जो प्रकृतियों यानी उसके जो प्रदेशों का प्रमाण है उसकी बात खास करके बताई थी। ये जो है ना, उद्वेलना कांडक होते हैं, क्या होते हैं, तो स्थिति कांडक होते हैं। स्थिति कांडक होते तो बहुभाग तो अपने को ही दिया जाता है, और पर प्रकृति रूप परस्थान में दिया जाने वाले वा तो द्रव्य विशेषहीन हो जाता है। देखो निकालो, पेज नंबर है 418। अरविंद भाई आप नहीं थे कल, अब सब उद्वेलन प्रकृतियों की मिला नीचे का पैराग्राफ। उद्वेलना के क्रम की प्ररूपना की जाती यथा अध प्रवृत्त स्थिति कांडक पल्लवपुम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यानी वो जो स्थिति कांडक होते हैं, यहाँ पर कांडक होते होते वो प्रकृतियां नष्ट होती है। पहले में कांडक का जो द्रव्य है वो किसमें दिया जाएगा, अपने नीचे के निषेकों में और पर स्थान में पर प्रकृति में। उन स्थितियों का जो प्रदेशाग्रह प्रथम समय में उत्कीर्ण किया जाता है वस्तु के, उत्कीर्ण करना है स्थिति कांडक के द्वारा नीचे लाना। अभी सुनो पूरा। द्वितीय समय में जो प्रदेशाग्रह उत्कीर्ण किया जाता है वह असंख्यात गुना है, जैसे हमने कहा ना, पहली फाली से दूसरी फाली से तीसरी फाली। तृतीय समय में जो प्रदेशाग्रह उत्कीर्ण किया जाता है वह असंख्यात गुना है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक असंख्यात गुणी वृद्धि के क्रम से ले जाना चाहिए। यह गुणकार का प्रमाण पल्लवपुम का असंख्यात वा भाग है। अब कहते अन्य प्रकृतियों में जो प्रदेशाग्रह दिया जाता है वह स्तोक है, और स्वस्थान में जो प्रदेशाग्रह दिया जाता है वह असंख्यात गुना है। एक बात, जो प्रदेशाग्रह स्वस्थान में दिया जाता है वह गुणश्रेणी क्रम से दिया जाता है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और जो प्रदेशाग्रह परस्थान में दिया जाता है वह विशेष हानि क्रम से दिया जाता है। परस्थान में देना उसी को हम संक्रमण कहेंगे, स्वस्थान में देने को हम तो स्थिति कांड घात कह रहे हैं। यह विधि प्रथम स्थिति कांडक की है, और जो विधि प्रथम स्थिति कांडक की कही है वही विधि द्वितीय कांडक से लेकर द्विचरम कांडक तक सब कांडकों की कहना चाहिए। यानी वो द्रव्य कितना परम है, उद्वेलना होते होते द्रव्य इटसेल्फ घट रहा है, तो प्रति कांडक भी पर रूप होने वाला द्रव्य कितना घट रहा है, तो अंतिम द्विचरम कांडक के अंतिम फाली में सबसे कम द्रव्य पर रूप होगा। यह संक्रमण की बात चल रही है। वो स्वस्थान में अपने ही नीचे के निषेकों में देने वाला द्रव्य तो बढ़ता चला जाता है, और पररूप होने वाला यहाँ घटता चला जाता है। हाँ, बड़ा काल तो उतना और घटे, जितने कांडक हो जाएंगे उतना वो और घटता चला जाएगा। विशेषण रूप से ये 418 पर हमने आपको कल यही प्रश्न आपका था और यही उत्तर भी दिया था। आगे बढ़ते हैं। अनंतानुबंधी कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है, तो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य जघन्य सत्कर्म के साथ चार बार चाहिए, चार चार नहीं, चार बार कषायों को उपशमा कर तत्पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अल्पकाल तक विसंयोजित अनंतानुबंधी को संयोजित करके जो सबसे महान सम्यक्त्व काल का पालन करते हुए, यानी पहले में पहले क्या किया, चार बार उपशमाया तो विसंयोजना करके ही किया था ना उसने, यानी एक भव में तो चार बार नहीं होता, तो एक भव में तो जप करेगा द्वितीय उपशम करके चढ़ेगा, तो द्वितीय उपशम के पहले तो विसंयोजना करेगा ही करेगा, ऐसे चार बार हो गया है उसका। अब कहते फिर उस मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, विसंयोजना वाला संयोजना किया, अल्पकाल तक विसंयोजित अनंतानुबंधी को संयोजित किया, यानी संयोजना होने का उसका काल छोटा लिया, जो सबसे महान सम्यक्त्व काल का पालन करते हुए बाद में अनंतानुबंधी की संयोजना हुई है और सम्यक्त्व में लंबे काल तक रहा। विसंयोजना तो अनेक बार कर सकता है, हाँ? वो भी पल्ले के असंख्यात भाग बार कर सकता है। विसंयोजना कितने काल में कर सकता है, अंतर्मुहूर्त में फिर दोबारा मिथ्यात्व में लौट से कर सकता है, परंतु इसमें जो चार बार उपशमाया था तो बहुत बार उसने विसंयोजना भी की थी, बहुत बार, हाँ। और अभी लास्ट में क्या किया था, अनंतानुबंधी की संयोजना होने के बाद सम्यक्त्व में लंबे काल तक रहा, तो सम्यक्त्व में रहते हुए अनंतानुबंधी का बंधन नहीं हो रहा है, एक बात, और वो उल्टा संक्रमण होकर उसमें द्रव्य भी बढ़ नहीं रहा। तो जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक क्या हो रहा है, हमने देखा ना अप्रशस्त उपशम है, उदय रूप होते होते अन्य कषाय रूप से उदय में आ रहा है, यानी उसका द्रव्य उतना कम हो गया। पहले तो विसंयोजना की थी बहुत बार, उपशम आया था कषायों को, फिर संयोजना की, फिर लंबे काल तक समय दृष्टि रहा, ऐसा जीव लिया। देखो अब कहते सम्यक्त्व का काल पालन करते हुए विसंयोजना को प्राप्त हुआ, अभी अंत में फिर उसने विसंयोजना की, यानी जितना भी कम द्रव्य था वो तो नष्ट कर दिया उसने, उसके विसंयोजन करते हुए अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में, अभी विसंयोजना कर रहा है ने क्या, उसका अर्थ क्या है, संक्रमण ही तो कर रहा है, अन्य बंधे बनते हुए कषाय में उसका संक्रमण हुआ है उस कर्म में। तो अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में, ये अधः प्रवृत्त करण यानी विसंयोजना वाला तीन करण में से, विसंयोजना के लिए जो करण होते हैं उसमें से ये अधः करण, तो उसके बाद अपूर्व करण में से तो उसका गुण संक्रमण चालू हो जाएगा। उसके अंतिम समय में अनंतानुबंधी कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, उसके बाद वो गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण हो जाएगा। आठ कषायों का, यानी जब वो लंबे काल तक सम्यक् दृष्टि रहा है तो नया बंध तो नहीं हो रहा था, और वहां पर भी उसका विद्या संक्रमण तो चल ही रहा था, है ना, क्योंकि चौथे से सातवें तक वो तो विद्या संक्रमण चल रहा था वहां पर। आगे पढ़ते हैं 434 पर नीचे, आठ कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है, ये आठ यानी बीच वाले, जो जघन्य सत्कर्म के साथ चार बार कषायों को उपशमा कर क्षपणा करता है, तत्पश्चात क्षपणा करते हुए जो अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में वर्तमान है उसके उनका जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। क्योंकि यहाँ पर भी इसका कौन सा संक्रमण चल रहा है? हाँ, विद्या संक्रमण चल रहा है। जरा उसका एंगल बदल के रखना। हाँ, देखो अभी हमने क्या देखा, आठ कषायों की बात फिर पढ़ती हूँ मैं। आठ कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रम कब होगा? देखो पेज नंबर 435 पहली लाइन, जो जघन्य सत्कर्म के साथ चार बार कषायों को उपशमा कर, यानी वहां पर भी उसका जो उपशमा आता है तो अपूर्व करण से उसका भी गुण संक्रमण तो होता ही होता है। और फिर तत्पश्चात क्षपणा करते हुए जो अध प्रवृत्त करण के अंतिम समय, यानी यह सातवां गुण स्थान है, वर्तमान है, यानी यहां पर उसका विद्या संक्रमण होगा क्योंकि अपूर्व करण से उसका गुण संक्रमण चालू हो जाएगा, उसके उनका जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। इसी प्रकार अरति और शोक के जघन्य प्रदेश संक्रम का कथन करना चाहिए क्योंकि उसका बंध तो छठे तक है, वहां तक तो अधप्रवृत्त संक्रमण था और सातवें में उसका विद्या संक्रमण होगा, पर उसके लिए भी वो चार बार उपशमाया वगैरह वो ले लेना। हास्य रति भय और जुगुप्सा के भी जग
सातवें गुणस्थान में अधप्रवृत्त करण लेना पड़ेगा
सबके लिए। अधप्रवृत्त करण सातवें में होता है कि प्रकृति के लिए अधकरण अलग अलग गुणस्थानों में नहीं होता? ये प्रश्न आपका मुझे समझ में नहीं आया बराबर। नहीं नहीं, आपने क्या संक्रमण का अध प्रवृत्त नाम लिया क्या? अध प्रवृत्त करण सातवें में होता है, वही की बात है, उसी की बात है, अन्यत्र कहा उसके अधकरण के संबंध आता है? संबंध ही नहीं आता। हास्य रति भय और जुगुप्सा के भी जघन्य प्रदेश संक्रम की प्ररूपना इसी प्रकार करना चाहिए। विशेष इतना है कि इनका जघन्य प्रदेश संक्रम आवली कालवर्ती अपूर्व करण के होता है। यानी क्या है, जो अंतिम समय में बंधा हुआ है ना, वो देखो उसके बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? आवली कालवर्ती अपूर्व करण के। हाँ, परंतु वहां सातवें में बंधा हुआ उसको आवली कालवर्ती अपूर्व करण लिया क्योंकि उसके बंध विच्छित्ति नहीं हुई है, तो इसका अधप्रवृत्त संक्रमण ये उसका अर्थ होता है।
गुण संक्रमण होगा कि
गुण संक्रमण कैसे होगा? जब तक बनती है तब तक तो अधप्रवृत्त संक्रमण है। आठवें में है ना, बंद है।
हाँ,
अंतिम आवली नहीं लिखा
है। आवली कालवर्ती मीन्स क्या लेना,
नीचे क्या लिखा है? आवलीय पवित्रस्य, नीचे देखो वही साइन जो है ना, हस्य रई भय दुगुण छाणंपी एवं छे वनवरी अपूर्व करणस्य आवलीय पवित्रस्य, यानी अपूर्व करण में प्रविष्ट होकर आवली वाला जीव लिया, यही उसका कारण है कि वह उसका अधप्रवृत्त संक्रमण है। तीन संज्वलन और पुरुषवेद का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो घोलमान जघन्य योग के द्वारा बांधे गए अंतिम समय प्रबद्ध का संक्रम कर रहा है, संयम नहीं संक्रम कर रहा है, क्या कहते हैं? ऐसे यहां तो घोलमान योग ही है, उसमें से जघन्य लिया, उससे बांधे गए अंतिम समय प्रबद्ध का यानी जहाँ जहाँ उसकी बंध विच्छित्ति होती है वहाँ का अंतिम समय प्रबद्ध लेना, उसका संक्रम कर रहा है। हाँ मिला क्या? हाँ संक्रम करना, वो य के बदले क्र लिखना, ऐसे उपशामक जीव के संक्रमक के अंतिम समय में उन चार प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। इसमें भी ऐसा है ना, पर प्रकृति रूप से वो कम हो जाएगा क्योंकि वो उपशम श्रेणी चढ़ के उतर रहा है। संज्वलन लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो जघन्य सत्कर्म के साथ कषायों का उपशम न करके क्षय करता है। अगर कषायों का उपशम करेगा तो सारे मिलकर संज्वलन लोभ में आ जाएगी।
जघन्य युग के द्वारा बांधे गए अंतिम समय प्रबंधक का
हाँ
संक्रमक कर रहा है ऐसे
हमने देखा था ना, जो चिष्ट जब उसका बंध रुक जाता है, बंध रुक जाता है तो अंतिम समय प्रबद्ध का क्या हो जाता है? उसका उपशमाने का कार्य चलता है। तो उपशमाते हुए उसके एक समय कम दो आवली काल लगता है, तो अकेला उपशम ही नहीं है तो उसका संक्रमण भी होगा वहां बंधने वाले में। यानी अपना अपना बंध का अंतिम समय लेना है इसका, और बाद में उसका जब संक्रमण हो रहा है। आगे संज्वलन लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो जघन्य सत्कर्म के साथ कषायों का उपशम न करके क्षय करता है, उस आवली कालवर्ती अपूर्व करण के संज्वलन लोभ का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। शपक श्रेणी वाला जैसे हमने हास्यरति में देखा था वैसे इसको भी यहां पर ले लेना। आवली कालवर्ती अपूर्वकरण यानी बाद में गुण संक्रमण चालू होता होगा, ये उसका अर्थ होता है। यानी वहां आवली पहले बंधे हुए की बात होगी ना, पंच सत्ता वही उसका अंतिम समय ले लेना है उसको। जैसे हास्यरति में देखा है ना वैसे यहाँ पर लेना। स्त्रीवेद का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो जघन्य सत्कर्म के साथ दो 66 सागरोपम काल तक सम्यक्त को पालकर, यानी यहां तो कोई स्त्रीवेद का बंध हुआ नहीं है, और चार बार कषायों को उपशमा कर फिर क्षय करने में प्रवृत्त होता है, उसके अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में स्त्रीवेद का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अधप्रवृत्तकरण का अंतिम समय यानी यहाँ तो उसका विद्या संक्रमण चल रहा है, बाद में गुण संक्रमण चालू हो जाएगा। नपुसक वेद की प्ररूपणा स्त्रीवेद के समान है। विशेष इतना है कि पहले ही तीन पल्यपम आयु वालों में उत्पन्न कराकर अंत में सम्यक्त को ग्रहण करके, क्योंकि तीन पल्यपम के आयु वाला जीव जो है वो तो नपुसक वेद को बांधता नहीं है, तो उतने काल तक उसने स्त्री या पुरुष वेद का ही बंध किया, उसने नपुसक वेद को नहीं बांधा, ऐसा जीव लिया और फिर सम्यक्त को लास्ट में ग्रहण किया। उसके बाद 266 सागर तक फिर भी उसने नपुसक वेद को नहीं बांधा है, यानी उसका नपुसक वेद का द्रव्य घट गया, ऐसा जीव लेना। आयु कर्मों का संक्रम नहीं होता। अब नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो उद्वेलित कर्म के साथ, क्योंकि उद्वेलना वाली प्रकृति है, अंतर्मूर्त काल संयुक्त होकर, यानी जब उससे अंतर्मूर्त में संयुक्त होना का अर्थ होता है जो जिसने नरक गति नाम कर्म की उद्वेलना की है। अब वो पंचेंद्रिय में जन्मा है तो अंतर्मूर्त काल संयुक्त होकर अंतर्मूर्त तक उसने बांधा और सातवीं पृथ्वी को प्राप्त हुआ। सातवीं पृथ्वी को प्राप्त हुआ तो वहां तो नया बांधा नहीं है, जो बांधा था उसका तो उदय आकर खिरता रहा। तत्पश्चात वहां से निकलकर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हो अल्पकाल उसका बंद करके फिर एकेंद्रिय जीवों में, यानी सातवें नरक से निकला, पंचेंद्रिय हुआ, छोटी भव वाला, थोड़े काल तक उसका बंद किया, फिर एकेंद्रिय जीवों में महान उद्वेलन काल द्वारा उद्वेलना कर रहा है। यानी पहले में पहले उसने पहले भी उद्वेलना की थी, अंतर्मूर्त बांधकर फिर सातवें नरक में गया था, वहां से कुछ पंचेंद्रिय में आया, थोड़ा ही बंद किया, फिर एकेंद्रिय में लंबे काल तक उद्वेलना की। हमको संक्रमण लेना है ना, पूरा उद्वेलना नहीं करना, पर उद्वेलना काल बड़ा लेना। उसका जो द्विचरम स्थिति कांडक है उसके अंतिम समय में, क्योंकि हमने देखा था उद्वेलना होते होते अंतिम द्विचरम कांडक के अंतिम फाली तक वो पररूप होने वाला द्रव्य विशेषहीन 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 घटता ही चला जाता है। नरगति नाम कर्म का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अंतिम कांडक में तो गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण होगा, इसलिए यहां लिया। यानी उसका कौन सा संक्रमण बताएंगे हम उसको, उद्वेलना संक्रमण है ना। देवगति नाम कर्म की प्ररूपना नरगति के समान है, उसमें भी ऐसा ही ले लेना। मनुष्य गति नाम कर्म का पेज नंबर 437, जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है। मनुष्य गति नाम कर्म की उद्वेलना करने वाला, हमने लास्ट टाइम उद्वेलना पूर्ण की ऐसा लिया। ऊपर देखो, जो तेउक कायो वाउक कायो वा उवेलिद मनुष्य गई नाम कम्म, उवेलिदे ने जिसने उद्वेलना कर चुकी है ऐसा जी, एक में जो तेउ का उवेलिद मनुष्य गई नाम कम्मो जहन्येन कम्मेन तेउ वाउ वंजेसु सुहमेसु खुदना भव गण मच्छीऊण संयुक्तो पुणो तेजु जीवे वा गदो। हाँ, यानी उसने उद्वेलना की थी, फिर वहां से निकल कर बांधी, फिर वहां गया, इस तरह से जीव लेना है। फिर से देखो, मनुष्य गति नाम कर्म की हमने देखा था उद्वेलना पूर्ण की है, ऐसा जो तेजस का एक अथवा वायु का एक जीव जघन्य कर्म के साथ तेज का एक और वायु का एक को छोड़कर शेष सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों में क्षुद्र भव ग्रहण काल रहकर उसको बांधता है।
उद्वेलना करने वाला जो तेज का ही अथवा वायु का एक जीव जघन्य कर्म के साथ, तो ये जघन्य कर्म अन्य कर्म लेना पड़ेगा क्या, मनुष्य गति का लेना पड़ेगा।
पर मनुष्य गति का तो उद्वेलना पूर्ण की हुई, वो बात कहाँ से आई।
तो अब ये मैं ये यहाँ पे
जो तेउक का यो वायु का यो वा उवेलिद मनुष्य का ही कम्मो नाम कम्मो जहन्ने न कम्मे न तेउ वाउ वज्जेसु सुहमेसु खुदा भव गण मच्छी उण संयुक्तो। इसका अर्थ ऐसा है, जघन्य कर्म के साथ वहां नहीं है, जघन्य कर्म के साथ वहां से निकला है। देखो देखो, यानी जघन्य कर्म के साथ संयुक्त हुआ, ऐसा उसका अर्थ लेना है। जिसने उद्वेलना पूर्ण की है ऐसा जीव, अभी जघन्य कर्म के साथ बाद में लेना। देखो देखो, पहले में पहले जिसने उद्वेलना की है, करने वाला है वो बात गलत है, ऊपर उवे लिद लिखा है जिसने पूर्ण की है। देखो यहाँ से पढ़ने के पहले हम देखते हैं, हमने नरक गति के लिए क्या देखा था, निकालो निकालो फिर बोलो। हाँ लेफ्ट साइड में, तो उद्वेलित कर्म के साथ देखो वहां पर ऊपर लिखो प्राकृत में देखो उवेलिदेन कम्मेन, फिर अंतमुत्तम संजोयेदुन यानी अंतर्मूर्त के लिए भी संयुक्त हुआ, संयुक्त हुआ यानी नया बांधा, यानी जिसने उद्वेलना की थी। कौन उद्वेलना कर रहा है? एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक जो नहीं बांधते वो उद्वेलना करते। उद्वेलना करने वाला पंचेंद्रिय में गया और अंतर्मूर्त को उसने बांधा, ऐसा जीव लिया, फिर नरक गति में घुमाया, वो नहीं लेना है यहाँ पर हमको। अभी हमको कैसे लेना है? तेज कायिक और वायु कायिक ने मनुष्य गति की उद्वेलना पूर्ण की, यानी सत्ता नहीं थी। अब सत्ता नहीं थी वो सूक्ष्म निगोद एकेंद्रिय वगैरह अन्य में गया, यानी सूक्ष्म में गया, अपन वायु और अग्नि को छोड़कर अन्य सूक्ष्म जीव में गया और वहां बहुत छोटे काल तक उसने मनुष्य गति बांधी, क्योंकि वो तिरंज गति मनुष्य गति अल्टरनेट बांधेगा, और फिर तेजस कायिक में उत्पन्न हुआ। यानी वहां जो बांधा था अभी उसको यहाँ उद्वेलना करता रहा फिर से, यानी जघन्य सत्कर्म के साथ वो आया हुआ है। जो अंतर्मूर्त वहां बांधा होगा उतना लेकर वो फिर वायु कायिक में आया और लंबे उद्वेलना काल तक रहा, तो अंतिम द्विचरम कांड के अंतिम समय में फिर वो बात घटित होगी। अब इसको फिर पढ़ते हम डायरेक्ट प्राकृत में से पढ़ेंगे। देखो जो तेउकायो वायुकायो वा उवेलिद मनुष्य गई नामकम्मो, यानी यह कैसा तेजस का एक वायु का एक है जिसने मनुष्य गति नाम कर्म की उद्वेलना कर चुका है। अब कहते हैं कि वो संयुक्त हुआ, संयुक्त होते संयुक्त हुआ, कैसे संयुक्त हुआ? तो कहते हैं कि वो जहने कम मैंने बाद में लेते तेउ वायु वज्जेसु, यानी तेउ कायिक और वायु कायिक को छोड़कर सुहमेसु सूक्ष्म में खुदा भव ग्रहण मच्छी ऊण संयुक्त, यानी खुदा भव ग्रहण वहां से बिताकर उसने वो संयुक्त हुआ। किससे संयुक्त हुआ? जहन्येन कम्मेन संयुक्त, ये जघन्य कर्म के साथ निकला ऐसा नहीं लेना, जघन्य कर्म के साथ संयुक्त हुआ ऐसा लेना। तब इसका भाषांतर ऐसा होगा मनुष्य गति के नाम कर्म की उद्वेलना पूर्ण की है ऐसा जो तेज का एक अथवा वायु का एक जीव, अभी जघन्य कर्म के साथ यहां मत लेना, तेज का एक और वायु का एक को छोड़कर शेष सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों में शुद्र भव ग्रहण काल रहकर जघन्य, हाँ उसको बांध कर जघन्य कर्म के साथ, या जैन जघन्य कर्म के साथ संयुक्त होता है बांध करके बात में काल रहकर जघन्य कर्म के साथ संयुक्त होता है ऐसा होना चाहिए। बांधने से ही वो संयुक्त होगा ना। देखो अभी देखो जो तेज कायिक अथवा वायु कायिक जीव तेज कायिक और वायु कायिक को छोड़कर शेष सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों में क्षुद्र भवन ग्रहण काल रहकर जघन्य कर्म से संयुक्त होता है, या जघन्य कर्म से संयुक्त होकर फिर संयुक्त होता है ये है ना, फिर तेज कायिक और वायु कायिक जीवों में जाकर, यानी उसने बस एक शुद्र भव तक ही मनुष्य गति उसमें कुछ काल तक बांधी, सबसे महान उद्वेलन काल के द्वारा मनुष्य गति की उद्वेलना कर रहा है, अभी इसको कर रहा है बरोबर है। अभी यहां मनुष्य गई उवेल मानस लिया और ऊपर लिखा था उवेलिद है ना, उसका जो द्विचरम उद्वेलन कांडक है उसके अंतिम समय में उसका जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, यानी उसका रोल तो एक ही है, पहले पूरी उद्वेलना की है, फिर कम से कम काल तक बांधा है, और फिर उसमें आकर फिर लंबे काल में उद्वेलना की है। क्योंकि भाषांतर उल्टा पुल्टा किया ना, वो कर्म के साथ वहां से फिर वहां उत्पन्न हुआ है। अब तीर्यंच गति और उद्योत नाम कर्म का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो जघन्य सत्कर्म के साथ मनुष्य गति को प्राप्त होकर, पहले में सत्ता में कम थी और मनुष्य गति को प्राप्त होकर तीन पल्योपम प्रमाण आयु वालों में उत्पन्न हुआ है। वह अंतर्मूर्त आयु के शेष रहने पर सम्यक्त्व को प्राप्त कर पल्योपम प्रमाण आयु वाला देव हुआ है। तीन पल्ले तक तीरंज गति बांधी ने उसने, फिर अंत में समय दृष्टि हुआ और देव हुआ तो भी तीरंज गति नहीं बांधी। तत्पश्चात अप्रतिपतित सम्यक्त्व के साथ, यानी सम्यक्त्व से छूटा नहीं, गिरा नहीं, मनुष्य गति को प्राप्त हुआ। फिर से भी अप्रतीत सम्यक्त्व के साथ 31 सागरूपम प्रमाण आयु वाला देव हुआ। वहां उत्पन्न होने के पश्चात अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अब 31 सागर वाला मिथ्यात्व में जाने पर भी मनुष्य गति को ही बांधता है, उसके तो तीरंज गति बनती ही नहीं है। तो 31 सागर तक भी उसने वो तीरंज गति का तो संक्रमण हो रहा है ना, मिथ्या दृष्टि है, परंतु अभी बंध विच्छित नहीं है। परंतु शुक्ला लेशा वालों को तो उसका विद्या संक्रमण ही होगा वहां पर, पहले गुणस्थान में नहीं बंधने वाली का सातवें गुणस्थान तक विद्या संक्रमण होता रहता है। पश्चात उस देव भव के अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यानी बीच में बिना सम्यक्त्व के भी उसने तीरंज गति नहीं बांधी। ये घटित करने के लिए पहले में तीन पल्ले में रखा, फिर छोटी देवायु ने पल्ले की ली सम्यक दृष्टि के साथ, और फिर सम्यक्त के साथ मनुष्य होकर फिर 31 सागर में उत्पन्न होने के बाद फिर मिथ्यात्व में गया है ना। फिर उसके अंत में सम्यक दृष्टि हुआ। पश्चात जो शेष 2/66 सागरोपम तक, अभी इसके बाद 2/66 सागर गिनना, पहले में पहले उसको सम्यक्त कितने काल तक रहा, भूख भूमि के अंत उत्पन्न हुआ, एक पल्ले पल्ले साधिक पल्ले प्रमाण देव हुआ, फिर एक मनुष्य का भव करके फिर देव में जाकर फिर उसमें मिथ्या दृष्टि हुआ था, तो वहां उसको वो गिनना नहीं है। अब यहां से लेकर कंटिन्यूस 2/66 सागर रखना, सम्यक्त्व का परिपालन करके, यानी यहां तो उसने तीरंज गति बांधी नहीं इतने लंबे काल तक, 4 बार कषायों को उपशमा कर उस उत्कृष्ट सम्यक्त्व काल में अंतर्मूर्त शेष रहने पर क्षपणा में उद्यत हुआ है, यानी वो थ्रू आउट उसने बंद किया ही नहीं, ऐसा जीव लिया। उसके अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, क्योंकि अधः प्रवृत्त के अंतिम समय में क्या होगा उसका, हाँ, विद्या संक्रमण, बाद में गुण संक्रमण होगा। तीरंज गति और उद्योत नाम कर्म का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। जैसे गतियों के जघन्य प्रदेश संक्रम की प्ररूपना की गई है, वैसे ही उनके अनुपूर्वियों का भी प्ररूपना करनी चाहिए। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है ना, जैसा गति का है वैसा अनुपूर्वी का। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक बंधन और वैक्रिक संघात की प्ररूपना नरगति के समान है, क्योंकि उसकी उद्वेलना भी नरगति के साथ हो जाती। आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य उक्त प्रकृतियों के जघन्य संक्रम के साथ नहीं, कर्म के साथ, जहन कम में है ना, प्रथमतः जघन्य संयम काल का पालन कर फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है। उसके उत्कृष्ट उद्वेलना काल का पूर्ण बंधक हुआ, फिर से दोबारा चल कीप किया। बैठा नहीं बराबर, देखो अभी हम आहारक की बात देख रहे थे। पहले जघन्य कर्म के साथ कब होगा, जब पहली बार संयम धारण किया तब। पहली बार संयमी हुआ तो उसने बांधा, तो बांध उसकी सत्ता में जघन्य कर्म था, ऐसा जीव लिया। फिर से पढ़ते, जो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य उक्त प्रकृतियों के जघन्य कर्म के साथ प्रथमतः जघन्य संयम काल का पालन कर फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। जघन्य संयम यानी जितना जो हम कहते ना, जब समय दृष्टि हुआ तो हजारों बार छठा सातवां करता है, तो उसका जो यथायोग्य अंतर्मूर्तक संयम ही रहेगा, तो उतने वहां रहकर फिर मिथ्यात्व में गया। उसके उत्कृष्ट उद्वेलन काल का जो द्विचरम उद्वेलन कांडक है, उसके चरण समय में उक्त प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। यानी मिनिमम संयम में रहा और मिनिमम बंद करके उद्वेलना लंबे काल तक की। औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक बंधन और औदारिक संघात। आवाज कहाँ से आ रही है? वो बंद है ना माइक, नीचे किया हुआ है ना। आगे पढ़ते देखो, ये जो चार है ना औदारिक शरीर संबंधी, उसका जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो जघन्य सत्कर्म के साथ तीन पल्योपम आयु वाले मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है। देखो सत्ता में पहले कम ही था, तीन पल्ले तक तो उसने देवगति बांधी। उसके तद्भवस्थ होने के अंतिम समय में इन प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। यानी वहां तो नहीं बंध रही है और उसका वहां तो संक्रमण चल रहा है। सत्ता में पड़े ना, उसका संक्रमण चल रहा है। तेजस व कारमान शरीर तथा उनके बंधन व संघात, प्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सब प्रशस्त प्रकृतियां हैं। आठवें में बंध विच्छित्ति होने वाली, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहगति त्रस बांदर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति और निर्माण नाम कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो कषायों का उपशम न करके शेष प्रकारों द्वारा जघन्य सत्कर्म करके तत्पश्चात क्षपण में उद्यत हुआ है। यानी शेष प्रकार ने उसके जघन्य योग से बांधा, जो अन्य अन्य कंडीशन हमने देखी थी वैसी बात है, उसमें कषायों को नहीं उपशमाया, बस इतना ही लेना। तत्पश्चात क्षपण में उद्यत हुआ है उस आवली कालवर्ती अपूर्व करण के इन प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है।
जघन्य सत्कर्म तो एकेंद्रीय में होगा ना।
हाँ, जो यथायोगी जो हमने क्षपित कर्मांशिक की अन्य जो कंडीशंस लागू की थी, वो कषाय को उपशम वाला वो बात छोड़कर बाकी सब ले लेना उसमें। प्रशस्त संस्थान पहले वाला और प्रशस्त सहनन की प्ररूपणा कार्मण शरीर के समान है, क्योंकि प्रशस्त संस्थान बनता है आठवें तक, प्रशस्त सहनन बनता है चौथे तक। अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, अब ये आठवें में बंध विच्छुत्ती है परंतु वो अप्रशस्त है। उपघात अस्थिर अशुभ ये छठे तक बनती है। और ऐश कीर्ति का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो जघन्य सत्कर्म के साथ चार बार कषायों को उपशमा करके गुण श्रेणियों के द्वारा गलाकर उसने गलाया है इसलिए कम किया है। दव प्रशस्त है ना, उसी ने गला कर कम कर दिया। सर्व लघु काल में एक सपना में उद्यत हुआ है उसके अदप प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, क्योंकि यहाँ तो उसका विध्यात है ना अभी भी वर्तमान होने पर उक्त प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अप्रशस्त सब संस्थानों
लोगों काल में सपना में उद्यत हुआ है वो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा करते हैं ना, क्योंकि इसका जगन्य
सपना तो क्षपक श्रेणी में ही होती है।
हाँ, नहीं पर तो उद्यत हुआ है तो
उद्यत हुआ है ना क्या? अभी वो श्रेणी सन्मुख है।
अध प्रवृत्त करण लेगा,
अध प्रवृत्त करण कब होता है? सातवें गुण स्थान में। इसलिए उद्यत कहाँ हुआ? सातिशय में, नहीं तो उसको क्षपक कहते ना अपूर्व करण से, उसको क्षपक नाम देते। अप्रशस्त सब संस्थानों और सहननों का तथा अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र की प्ररूपना नपुसक वेद के समान है। अब उसमें हमने क्या देखा था, ये जो नहीं बनती ऐसे वाले नपुसक वेद के लिए क्या किया था? वो तो भूभूमि में लिया, फिर वो समय दृष्टि रखा वगैरह वगैरह करके। हाँ, दो शास्त्र सागर यानी उसका बंद ही नहीं किया। हाँ, बाद में वो सपना में उद्यत हुआ। आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर की प्ररूपना तीर्यंच गति के समान है। विशेषता इतनी है कि अब इनका बंध तो नरक में भी नहीं है के छठी पृथ्वी में अंत में सम्यक्त्व को ग्रहण करके, यानी छठी पृथ्वी में तो 22 सागर तक तो उसने बांधा नहीं था, अंत में सम्यक्त्व धारण किया और सम्यक्त्व के साथ निकलकर फिर सभी को 185 सागरोपम तक पूरा करना चाहिए। देखो देखो, पहले 22 सागर लिए छठे नरक के, फिर 266 सागर यानी कितना 132 हुआ सम्यक्त्व में, और लास्ट में 31 सागर में उसको मिथ्या तो में भेजा 31 सागर, तो पूरा उसका 185 होता है। तो इस तरह से 185 पूरा करना चाहिए। यह इन प्रकृतियों के तीर्यंच गति से विशेषता है, क्योंकि तीर्यंच गति में वो 22 वाली बात नहीं ले सकते। मिथ्या दृष्टि जो नारकी है 22 सागर तक उसने इनको बंद नहीं किया था, एक इंद्रिय संबंधी जो है, परंतु उसने तीर्यंच गति तो बांधी थी पंचेंद्रिय के साथ, इसलिए उसके 185 सागर नहीं घटित हुए थे। विशेषार्थ तीर्यंच गति के जघन्य प्रदेश संक्रम की प्ररूपणा में 163 सागरोपम और 4 पल्योपम तक, यानी 3 पल्ले पहले लिया, फिर अंत में एक पल्ले वाला सम्यक दृष्टि होकर एक पल्ले का देह हुआ, फिर मनुष्य का छोटा भाव करके फिर 31 सागर में उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व के साथ, ऐसा लिया था हमने, उसके बंध का अभाव निर्दिष्ट किया गया है। परंतु इन आपतप आदि प्रकृतियों के बंध का अभाव 185 सागरोपम और 4 पल्ले तक रहता है। वह इस प्रकार से कोई क्षपित कर्मौशिक जीव छठी पृथ्वी में 22 सागरोपम आयु वाला नारकी उत्पन्न हुआ, वहां वह आयु में अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्व को प्राप्त होकर उस अविनष्ट सम्यक्त्व के साथ यानी सम्यक्त्व को लेकर मनुष्य होता है, और वहां पर सम्यक्त्व के साथ सीमा संयम को पालकर फिर सौधर्म स्वर्ग में 4 पल्योपम आयु वाला देव उत्पन्न होता है। वहां भी अविनष्ट सम्यक्त्व के साथ देव भव से च्युत होकर मनुष्य भव को प्राप्त होता हुआ यहाँ संयम को पालता है और तब मृत्यु को प्राप्त हो ग्रवेकों में 31 सागरोपम प्रमाण आयु वाला देव उत्पन्न होता है। यहाँ उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त पश्चात वह मिथ्यात्व को प्राप्त होकर आयु में अंतर्मूर्त शेष रहने पर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात 266 यानी 132 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व को पालकर और 4 बार कषायन को उपशमा कर इस उत्कृष्ट सम्यक्त्व काल में अंतर्मूर्त शेष रहने पर क्षपणा में उद्यत होता है। उस समय अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में उसके उपर्युक्त आतपादि प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में लेना, वहां पर विद्यात्व वाला होता है इसलिए, क्योंकि बाद में उसका गुण संक्रमण होगा। इस प्रकार सौधर्म देव की आयु के 4 पल्योपमों के साथ 185 सागरोपम काल तक, ये नीचे 22 प्लस 31 प्लस 132 करना है। क्या प्रश्न है आपका? इन प्रकृतियों के बंध का अभाव रहता है, जबकि तिर्यंच गति के बंध का अभाव 4 पल्योपमों से अधिक 163 सागरोपम काल तक ही रहता है। यही उससे इन प्रकृतियों के जघन्य प्रदेश संक्रम में विशेषता है। वो लंबे काल तक उसको क्यों नहीं बांधता, उसके कारण से ही कुछ विकलेंद्रिय जाति नाम कर्मों की प्ररूपना साधारण शरीर नाम कर्म के समान है, क्योंकि नारके उनको भी नहीं बांध रहा है और फिर ग्रवेक वाला भी उनको नहीं बांधेगा। अब कहते उच्च गोत्र की प्ररूपना,
सागर ले सकते
फिर से बोलना,
विकलेंद्रिय के लिए भी हम लोग 185 सागर
अभी तो बताए ना, यह इस वाक्य का अर्थ क्या है? विकलेंद्रिय जाति नाम कर्मों की प्ररूपना साधारण शरीर नाम कर्म के समान है। अभी ये जो हम देख रहे थे अभी तक, उसमें क्या है था? आतप है, स्थावर है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त और साधारण, सबके लिए यही प्ररूपना है 185 वाली। अब उच्च गोत्र की प्ररूपना मनुष्य गति के समान है। क्या कहेंगे यहाँ? तेज का एक, वायु का एक ने उसकी उद्वेलना पूर्ण की है, एक सूक्ष्म भोग, सूक्ष्म का एक शुद्र भोग किया, उसने फिर उच्च गोत्र बांधा, फिर तेज का एक, वायु का एक में आया, फिर लंबे उद्वेलना काल के द्विचरम कांडक के अंतिम समय में उसका जघन्य प्रदेश संक्रम होगा। जघन्य सत्कर्म के साथ, सॉरी तीर्थंकर, तीर्थंकर नाम कर्म का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जघन्य सत्कर्म के साथ प्रथमतया जघन्य योग के द्वारा जो समय प्रबद्ध बांधा गया है, बंधावली के पश्चात उसका संक्रम करने वाले के तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अथवा दूसरी पद्धति से अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के विद्या संक्रम के द्वारा उसका जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि का विद्या संक्रमण कैसे कहेंगे हम? अरे बंद नहीं, परंतु उसका संक्रमण है ना, बंद नहीं है तो विद्या संक्रमण चल रहा है। कौन सा? वो नरक में उत्पन्न हुआ है। अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि कब होगा? नरक में, वो तो शरीर पर्याप्ति का समय होगा उसका। यानी शरीर पर्याप्ति के पूर्व समय वो, क्योंकि तभी उसका समय का प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार स्वामित्व की प्ररूपना समाप्त होती है। अब यहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी वो काल की बात कल हम पढ़ेंगे, कल से। यानी उत्कृष्ट का लगातार काल कितना है, जघन्य का काल कितना है, उसकी बात यहाँ बताएंगे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्त कलम सदा देत हो। Thank you.